जब बहनें दुख सुख के नाम पर अपने मसाइल पेश करती हैं, शौहर की शिकवे, मेरा शौहर शराब पीता है, मेरा शौहर ऐसे है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका रिश्ता किस बुनियाद पे हुआ, किसने किया? वो कहते हैं बस जी फैमिली ने कर दिया, और खास तौर पे बाहर के मुल्क, यहाँ बैठे हैं बाहर का रिश्ता आया, रिश्ता कर दिया। मैं नहीं कहती बाहर वाले अच्छे होते हैं और मैं नहीं कहती बाहर वाले बुरे होते हैं, ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि बाहर वाले अगर आपको अच्छी शोहरत में मिले तो वो बहुत अच्छे होंगे, और खुदा ना खास्ता किसी की बुरी शोहरत हो तो वो इतने बुरे होंगे लड़के कि आप उसका सोच ही नहीं सकती। अच्छे यहाँ भी हैं, अच्छे वहाँ भी हैं, बुरे यहाँ भी हैं, बुरे वहाँ भी हैं, लेकिन कभी अपने बच्चियों के रिश्ते सिर्फ इस नाम पे ना कर दीजिए कि रिश्ता बाहर से आया है। हम अपने फैसलों की बुनियाद पे जी रहे हैं। आज भी तो मैं इधर इसलिए हूं ना कि फैसला कर लिया था जाना है, तो डिसीजन मेकिंग सीखिए, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, और इसके लिए अल्लाह के नबी की एक दुआ है जो आपने हमें सिखाई भी, आप भी याद कर ले, मैं बोलूँ मेरे पीछे पढ़ेंगे जी। अल्लाह के नबी क्या फरमाते थे? अल्लाहुम्मा अरिनल अशिया कमा हिया। अरबी में नहीं आती, कोई बात नहीं, उर्दू में क्या है? ए अल्लाह मुझे चीजें वैसी दिखा जैसी वो हैं। अभी मिसाल दी ना, रिश्ते करते वक्त झूठ सच बोलते हैं, दुआ किया करे अल्लाह ये जो रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया है ना, असल में इस लड़के की और इस खानदान की जो हकीकत है ना, वो मुझे खोल के दिखा दे, ऐसा ना हो कि आज मैं चमक दमक देखूं और बाद में फिर मुझे ऐसे लगे और वैसा हो, जो है वैसा हो। वो कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आपके शौहर ने कहीं कारोबार करना है, कोई बहुत अच्छी सी डील दिखती है, बाद में पता चला फ्रॉड हो गया, 50 लाख रुपया डूब गया, तो अल्लाह से ये दुआ किया करे कि अल्लाहुम्मा अरिनल अशिया कमा हिया, अल्लाह चीज़ें वैसी दिखाया कर जैसी हैं। इसी तरह एक और बड़ी प्यारी दुआ है कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक का हक कर वरजुक न इतबा हो, अल्लाह मुझे हक को हक करके दिखा और फिर मुझे उसकी पैरवी की भी तौफीक दे। वरिनल बातिला बातिलन वरजुक न इजतना बहू, अल्लाह बातिल को बातिल करके दिखा और मुझे उससे बचने की भी तौफीक अता फरमा। तो बहरहाल क्या पता चला कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे फैसलों की दुआ करें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को अल्लाह ने कबूल किया, नबूवत तो पहले मिली हुई थी, औलाद भी मिल गई, और औलाद जो मिली थी वो नेक भी हो गई। आज भी सारे दीन जितने भी मौजूद हैं या गुजर चुके, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अपना ताल्लुक जोड़ते हैं। वजह एक तो इखलास, लेकिन हिजरत, लफ्ज़ लिख लीजिए। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आज तक आपने अल्लाह के लिए क्या छोड़ा है? हिजरत पता है किसको कहते हैं छोड़ना? हाजरा, हिजरत, उर्दू में भी हम बोलते हैं। हम क्या छोड़ते हैं अल्लाह के लिए? याद रखिए, हिजरत वही कर सकता है जिसको अल्लाह से सच्ची मोहब्बत हो। सिगरेट छोड़ना ये भी एक हिजरत है, अपना पसंदीदा लाइफस्टाइल छोड़ना ये भी एक हिजरत है। अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा लोगों को मौका देता है, गौर से सुनिएगा जुमला, हम अपने बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं, क्या करें, खानदान की ये मर्जी है, फैमिली है, बिरादरी है, ससुराल का मामला है, हम अक्सर वो काम भी कर देते हैं जो हमारा दिल नहीं कर रहा होता करने को, होता है ऐसा, सिर्फ इसलिए कि लोग खुश हो जाएं। ऐसे वक्त में याद रखिए, हिजरत फी सबीलिल्लाह कौन कब करता है? ताकि तन्हाइयों में अल्लाह ताला की रहमत उनके रफीक रहे। उस बंदे पे अल्लाह की रहमत नाजिल होती है जो अल्लाह के लिए नाफरमानियां छोड़ दे, अल्लाह के लिए गलत काम छोड़ दे। और आपको जो मैंने आयत दी है उसमें भी अगर आप देखें, वहबना लहुम मिन रहमतिना, अल्लाह कहते हैं हमने उनको अपनी रहमतों से नवाजा, यानी इब्राहिम, इसहाक, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी नस्लें, अल्लाह ने इन पे अपनी रहमत नाजिल की। क्यों? आप देखिए तो पूरी सूरत में रहमत के साए छाए में, रहमत है वो दोस्त, रहमत है वो हमदम, रहमत है वो रफीक जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी कौम और इलाके को छोड़ने के इवज़ दिया गया, ताकि इनकी तन्हाइयों में रहमत इन पर रहे। अफसोस की बात कहूँ, और ये सूरह मरियम की आयत पे जाकर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कैसे आज हम में से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग सिर्फ नाफरमानियों की महफिलों में जाके बैठ जाते हैं। यही शादी हॉल है, इधर शादी के नाम पे कितनी नाफरमानियां होती होंगी, सिर्फ क्या करें जी, वो ससुराल का मसला है, बच्चे की शादी है, बेटी, आज एक नियत करके उठे, चाहते हैं कि आपकी मेरी दुआएं कबूल हों। हम सभी चाहते हैं ना। तो फिर आज के बाद ला तातली मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जिस बात में अल्लाह नाराज हो उसमें किसी बंदे की नहीं माननी। ये जो इब्राहिम को सच्ची शोहरत सच्ची नामवरी मिली वो इसलिए मिली कि उन्होंने लोगों को नाराज कर लिया, अल्लाह को नहीं किया। आप इब्राहिम की कहानी सुनना चाहते हैं? हमने अभी इस गर्मियों में पेरिस से एक पूरा कोर्स किया था ज़िलहज के जो 10 दिन थे उनके अराउंड में, कि जिसमें इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, ये सब कुछ आपको यूट्यूब से मिलेगा और वेबसाइट पे भी मौजूद है चीज़ें। क्या पता चले, इब्राहिम वो जिसने वफ़ा की, बेवफा नहीं थे इब्राहिम। देखिए सब अल्लाह के बंदे हैं, आप भी मैं भी, शराब पीने वाला भी अल्लाह का बंदा है, कुफर करने वाला भी अल्लाह का बंदा है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस तरह के नेक लोगों का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ वफा की। तो जितने आप अल्लाह के साथ सच्चे होते जाएंगे, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करता जाएगा, तन्हाइयों में आपका दिल खुश होगा। और याद रखिए, सच्चाई की बात इसलिए की कि सच्चाई का फ़ायदा ये होता है कि बंदा सच्चा हो ना तो शहीद का मुकाम हासिल कर लेता है, शुहदा का मुकाम है सच्चाई का। जिंदगी भर अगर आप कॉल और फेल में सच्चे रहे तो मौत का दर्जा शहीदों की तरह होगा। दुआ किया करें अल्लाह हमें शहादत की मौत नसीब करे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक रिवायत आती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से शहादत मांगे इसको शहादत का सवाब मिल जाएगा, गो के शहादत ना हो। आप घर के अपने बिस्तर पर मरेंगे लेकिन अल्लाह के फरिश्ते लिखेंगे कि ये शहीद हुआ है। आप इल्म की महफिल में आज इल्म के लिए आए हैं ना, तालिब इल्म की हालत में जो मर जाते हैं उसको भी शहादत मिलती है। इल्म लेने के लिए कुरान के कोर्सेज में आए ना आए, इसलिए आ जाएं कि इस दौरान जिंदगी में कहीं फौत हो गए तो शहादत की मौत होगी। सिर्फ की सच्चाई इसलिए भी कि सच्चाई दिल को मुतमईन करती है, झूठ दिल को बेकरार करता है और शक में मुबतला करता है। चलिए एक और नियत करते हैं आज से। पहले खुद से पूछिए, झूठ तो नहीं बोलती मैं? खुद से पूछिए, मुझे कोई ना कुछ बताए। चंद सेकंड आंखें बंद करें, अपने आप से पूछिए क्या मैं झूठ बोलती हूँ। नंबर दो, कभी मसलहत के नाम पे झूठ बोलती हूँ? नंबर तीन, खुद से पूछिए लड़ाई ना हो जाए इस डर से झूठ बोलती हूँ? नंबर चार, आदतन तो नहीं झूठ बोलती? नंबर पाँच, कंपल्सरी लायर जो होते हैं ना, ऐसे ही रिक्शे वाले को कह दिए, रोज जाते हैं, हम तो 50 रुपये देते हैं। दुकानदार ने बेचारे ने कहा ये 1000 रुपये का जोड़ा, कहना पीछे से 800 का मिल रहा है। ऐसे झूठ, बास लोग बात बे बात झूठ बोलते हैं। नियत कितनी बहने करती हैं, आप हाथ खड़ा करें, आज के बाद झूठ नहीं बोलना। माशाल्लाह, आपने भी हदीस भी नहीं सुनी और आपने बोल दिया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा था कि मोमिन बुजदिल हो सकता है? कहा हो सकता है। कई मियाँ इतने डरपोक होते हैं कि वो काकड़ों जा जाए तो वो पलंग पे चढ़ जाते हैं और बीबी को कहते हैं तुम इसको मारो। छिपकली आती है तो वो छत पे चढ़ जाते हैं कि बेगम आप मारिए। क्या करें, मोमिन है, कोई बात नहीं है। और औरतें इतनी जीदार होती हैं कि वो पकड़ लेती हैं। वो कहते हैं ना कि एक आदमी था तो उसकी शादी हुई, तो दोस्त जरा ऐसे बेली यार जो होते हैं ना वो बड़ी पट्टियाँ पढ़ाते हैं, कहने लगे आज पहले ही दिन बीवी पे रोप डालना, फिर सारी उम्र तुमसे डरेगी। कहा अच्छा क्या करो? कहने लगा हम तुम्हारे कमरे में एक बिल्ली छोड़ देंगे, छोटी सी बिल्ली होगी, तो तुम बीवी के सामने बिल्ली पकड़ना, उसकी गर्दन मरोड़ के उसको खिड़की से नीचे फेंक देना, तो देखना फिर कभी तुम्हारे आगे नहीं बोलेगी, वो जिसको पंजाबी में कहते ना कुएगी नहीं, तेरे आगे नहीं कुएगी है। उसने कहा अच्छा काम तो मुश्किल है लेकिन इतना फायदा है कि बीवी सारी उम्र मेरे से डरती रहेगी, तो मैं ये कर देता हूँ। खैर कमरे में आया, थोड़ी देर बाद ना इधर देखे उधर देखे इधर देखे, वो बिल्ली ढूंढ रहा था। तो बीवी ने कहा कि सरताज अब क्या ढूंढ रहे हैं, क्या हुआ है? कहने लगा कि वो इधर एक बिल्ली थी, वो पता नहीं किधर गई। कहती मैंने उसकी गर्दन मरोड़ के खिड़की से फेंक दिया। आप पता नहीं ये किसके घर की कहानी है जी। तो बुजदिल हो सकता है मोमिन, मुजदिल कंजूस भी हो सकता है। कई मर्द है बेचारे खर्चा ही नहीं पूरा देते, कोई बात नहीं है, थोड़े पे गुजारा कर ले, लड़ाई ना करें। लड़ाई नहीं करती आपने आज जो सीख के, जब घर वाले जाके पूछे की सिक्के आई, कहने लड़ाई नहीं करनी चुप हो जाओ, मुझे ये ना पूछना देर से क्यों आई। तो लेकिन कहा क्या मोमिन झूठा हो सकता है? कहा झूठा नहीं होता। तो आज वादा करते हैं, यकीन करें ये जो जोहराबाद से इधर आने का थोड़ा सा सफर था, मैं समझूंगी इसकी कीमत डल गई अगर आपने नियत कर ली कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि झूठ बुराई की तरफ लेके जाता है और खैर की तरफ क्या लेके जाता है? सच लेके जाता है। हदीस है कि बंदा सच बोलता है, अल्लाह के यहाँ उसका नाम सच्चा लिखा जाता है, वो सिद्दीक हो जाता है, और बंदा झूठ बोलता है कि अल्लाह के यहाँ उसका नाम कज़ाब लिखा जाता है। देखिए मुसैलमा कज़ाब एक ऐसी शख्सियत है कि जो अल्लाह के नबी के पास झूठी नबूवत के दावा करने वाले को टाइटल मिल गया था। तो इंशाल्लाह हमने झूठ नहीं बोलना, और बच्चों से भी झूठ नहीं बोलना, अपने बच्चों को भी झूठ से दूर कीजिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी सच्ची की तरफ आएगी। और दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी तौहीद ठीक कीजिए। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना। औलाद अल्लाह देता है तो ले ले, नहीं देता तो नहीं लेनी। बाबों से हमने नहीं लेनी, बाबे देते हैं तो रखो अपने घर, हम नहीं चाहते। बच्चियों के रिश्ते अल्लाह करवा रहा है तो हो जाएंगे, नहीं होते तो सब्र करें। हमने किसी कब्र पे माथा टेक के नहीं कहना कि बच्चों के रिश्ते करा दे, ये झूठ होता है। शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तो हमने जो बात की उसका खुलासा करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज आप इंजॉय करें, मैं कम बोलूँ। तो हमने जिक्र खैर के मुख्तलिफ मानी देखे क्या थे। मैं 1, 2, 3 करके अब जितनी बात हुई ना इसको बस खुलासा कराऊंगी, क्योंकि पीछे बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं और माएँ बेचैन होंगी। तो अल्लाह के नबी नमाज को मुख्तसर कर देते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बहुत सारी बात की। तो इब्राहिम ने इस दुआ में क्या मांगा? नंबर एक, पिछलों में मेरा जिक्र खैर हो, मेरे बाद क़यामत तक मेरा नाम लिया जाए तो अच्छे अंदाज से लिया जाए। मेरे बारे में जो बात करें लोग, मेरे बारे में जो तबसरे करें, जो तारीफें करें, वो सच की हों। देखिए हम में से कोई चाहता है कि हम यहाँ से उठ के जाएँ और लोग हमारी बुराइयाँ शुरू कर दें? अच्छा बाय द वे, क्या आप मेहमानों के जाने के बाद बुराइयाँ तो नहीं कर रही थी? हाय बड़े शरारती बच्चे थे, हाय हेठली उतली कर गए, हाय सारे कुशन जमीन पर रख गए, और वो देखो पर्दों से हाथ साफ कर गए। नहीं करनी, वैसे ही पहले ही बच्चों वालों के आने से पहले घर की अच्छी चीज़ें उठा दिया करें, बिलीव मी। लेकिन कभी किसी का जिक्र बुरा ना करें, कोई नहीं चाहता। अपने लिए भी हम दुआ करें। आप ज़रा सोचिए, अब यहाँ बड़ी हसास बात करने लगी हूँ, तसव्वुर में लाइए। और मैं आपको बता दूं कि तसव्वुर में करने से आपको कुछ नहीं होगा, कोई बदशगुनी ना ले। मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, मैं अक्सर तसव्वुर में लाती हूँ कि मैं मर गई हूँ और मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई है, मेरा जनाजा रखा हुआ। ज़ाहिर है उन्होंने भी आना है सुन के जो मुझे 10 साल से नहीं मिले। अल्लाह ना करे अगर किसी के दिल में कोई गुस्सा गिला होगा, उसने भी आना है, क्योंकि हम मरने पर ही जाते हैं। जिंदगी भर भाई बहन लड़े रहते हैं, रूठे रहते हैं, रिश्तों के ना होने पर, जायदादों के झगड़े। और जब भाई मरता है तो फिर बहन रोती भी जाती, हाय मेरा वीर मैं तो तुझे मिली नहीं 5 साल से। है कोई ऐसा? चले एक और नियत करें, यहाँ बैठे बैठे सबको माफ़ कर दें, और ख़ास तौर पे खून के रिश्ते। हम गैरों से इतने अच्छे होते हैं। बड़ा लोग कहते हैं भाई फुलां तो बड़ी बाखलाक है, बड़ा हसमुख है, लेकिन अपने भाई बहनों से खुदरे खुदरे रहते हैं। यहाँ बैठ कर सारे रूठों को माफ़ कर दें। अगर किसी ने हाथ खड़ा करना है इस नियत से कि मैंने दिल में सोच लिया किसी को माफ़ करना है, तो वो हाथ खड़ा करें ताकि आपका हाथ देकर दूसरे भी माफ़ करें। माशाल्लाह आज तो कितनों के दिल हल्के हो गए। आपको पता है कि हमने खुशाब से जो दौरे कुरान किया था ना 2019 में किया था, उसका टॉपिक था रिश्ते जोड़िए। किसी को याद है? आप में से किसी को मौका मिला सुनने का? उसमें हमने कितने रिश्ते जोड़े थे, हर पारे में एक रिश्ते की बात हुई। आप लोग अगर अपने ऑन पे सुनते हैं दौरे कुरान, तो इस साल रमज़ान में आप दौरे कुरान 2019 सुनिएगा। एक दिन हमने ससुराल की बात की, एक दिन भाइयों की, 30 पारों में 30 रिश्ते पूरे किए थे, और क्या क्या उसके मौजज़े देखे थे बाद में। तो अपनों से मत लड़ा रहा करें। आप सोचिए आपकी डेड बॉडी है, जो लोग आ रहे हैं, ये है सवाल, मेरे बारे में क्या कहेंगे। देखिए वक्ती तौर पे तो उस वक्त कुछ लोग तारीफें कर ही रहे होते हैं ना, लेकिन बाद में लोग क्या, मेरी बहुएं क्या सोचेंगी, शुक्र अम्मा फौत हुई है, हर वक्त बोलती रहती थी, हर वक्त ही चरचर चरचर लगाई थी। तो आप में से जो माशाल्लाह साथे हैं और बड़ी उम्र के बुजुर्ग लोग हैं, दुआ करें कि हमारे जाने के बाद बहुएं वाकई दिल से रोएं कि मेरी सास नहीं मेरी माँ की तरह थी, मेरा कितना ख्याल करती थी। तो अपने ससुराली रिश्तों को सोचिए, अपनी बहुओं को, अपने बेटों को, कि मेरे बाद वो मेरा कैसा जिक्र करेगा। और याद रखिए लोग हमारे बारे में मरने के बाद जो कहेंगे ना, वो हमारे हक में जाता है या हमारे खिलाफ जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मरने वाले का तज़किरा अच्छा किया करो, बुरी बातें ना उसकी किया करो, क्योंकि ये लिखी जाती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीका ने एक मौके पे देखा कि लोग किसी की बुराई कर रहे थे, फौत हो गया हुआ था वो शख्स और उसकी बुराई कर रहे थे, तो आपने कहा कि जिंदा लोग थोड़े हैं, मरे हुओं को तो छोड़ दो। तो कभी किसी की बुराई ना करें, अपने लिए भी अमल की बात लिखें। आज के बाद किसी की बुराई नहीं करनी जो फौत हो गए, सास चली गई कब्र में। बाद लोग सास की बुराई फिर भी कहते, अल्लाह माफ करे मेरी सास को, बड़ी सख्त थी मेरी सास, बड़ी जुबान की तेज थी, मत कहेंगे इंशाल्लाह। और दुआ करें कि अल्लाह जब हम दुनिया से जाएं तो ज़मीन भी रोए और आसमान भी रोए, वो ज़मीन के टुकड़े रोए जहाँ बैठ कर इबादत करते थे और जहाँ हमारे नेक अमाल जाते थे, आसमान के वो टुकड़े भी रोएं। तो क्या कहा अल्लाह ने उनको, व तरक नाली ही फिल आखिरीन, हमने इब्राहिम की तारीफ और उसकी तौसीफ हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। सूरह साफ़ात की आयत 108 है। और एक बात बताऊं, नेकी की वजह से अल्लाह दिलों में प्यार डाल देते हैं। आप चुपके से अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ते जाएं और अपनी नमाजों को और अपने अमाल को अच्छा करते जाएं, आपको पता क्या होगा, आपका महबूब आपके कदमों में, शौहर आपसे मोहब्बत करेंगे। हमारे हामिल नजूमियों के पास लोग जाते हैं, वजीफा बता दो जी, मेरा मियाँ मुझसे प्यार करे, भी उसकी खिदमत करो, घर साफ रखो, खुद साफ सुथरी रहो, खुद ही प्यार करेगा। बास खवातीन कहती हैं मेरे मियाँ पे किसी ने जादू कर दिया। भाई जादू तो आपने ही बड़ा किया हुआ है, भाई क्या हुआ है उनके साथ? कहती बाहर बड़े खुश रहते हैं, घर में आते गुस्सा चढ़ जाता है। तो भाई गुस्सा तो चढ़ना है, दरवाजे से तो उनको चीजें बिखरी हुई नजर आनी है, घर में स्मेल है, बदबू है, आपका हाल बुरा है, लहसुन प्याज की स्मेल आ रही है, तो आप खुद भी तो वजह हो सकती हैं शोहर के बुरा गुस्सा होने की। लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए दिलों में प्यार डालेगा कब? सूरत मरियम की आयत 96 याद कर ले, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति सयजअलू लहुमुर रहमान वुद्दा, यकीनन जो लोग ईमान लाकर नेक अमाल करेंगे अनकरीब रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। और याद रखिए ये मोहब्बत बड़ी प्यारी होती है, लोग औरों से भी प्यार करते हैं लेकिन वो सिर्फ उनके प्रोफेशन की वजह से या जाती चीज़ों की वजह से। असल प्यार क्या है? अल्लाह की रजा के लिए वॉलंटियर कीजिए, अल्लाह के लिए अपनी जिंदगियां खपा दें। प्यार मोहब्बत सिमटे नहीं सिमटेगी, आपका दामन छोटा पड़ जाएगा लेकिन प्यार ज्यादा होगा। तो जो लोग अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, अल्लाह दिलों में उनके लिए लोगों के प्यार डालते हैं। तो पहला मानी आज सीखा कि इब्राहिम ने अपने बाद अच्छा तस्करा मांगा। आज से आपने मैंने इस सोच से जीना है, क्या बात है मैं क्यों करूं? देखिए ना, बड़ा दिल चाहता है किसी को ताना देने को। मिसाल है, बहू है, देर से उठी, 9 बजे उठी, 10 बजे उठी, आपने खाना भी पका लिया, अब आपने उठते उसको कहना है उठ गई बेगम साहबा, बड़ी नवाबजादी है। मिसाल है, आप तो नहीं कहते होंगे मुझे यकीन है, लेकिन अक्सर कहते। अब जरा सोचिए मेरा ये जुमला सुनकर भला वो खुश होगी? अच्छा फिर हम कहते हैं वो मेरी इज्जत भी करे, क्या वो इज्जत करेगी आपकी? कभी भी कोई कड़वा जुमला बोलने को दिल जाए या बुरी बात का जवाब देने को दिल करे तो 3 सेकंड सोचे, मैं ना ही करूं तो क्या बन जाएगा? बात वो कीजिए जिससे अगले का दिल खिले। वो कहते हैं ना, बात करो तो फूल झड़े, बात करो तो शहद टपके, मीठी बातें करें नहीं तो चुप रहे, चुप रहने से भी उसको पता चल जाएगा कि मैं देर से उठी हूं। तो आपने एक कड़वा जुमला बोलकर उसका दिल क्यों तोड़ना? कम बोले, प्यार देंगे खुद ही प्यार करेगी। आप उसके लिए नाश्ता बना के रखें, वो नई नई बेचारी बहू आई है, अभी उसने माँ के घर में कभी अंडा भी नहीं उबाला और आप कहते हैं वो पराठे और आपको ऑमलेट खिलाए और फिर सारे घर के भी काम करे, टाइम लगता है। आजकल शादियों का सीजन है तो शायद किसी को फायदा हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ का दूसरा मतलब क्या था? कि इब्राहिम ने सच्ची नामवरी की दुआ की कि बाद में आने वाले भी इसी दीन हनीफ पे कायम रहे। अपनी नस्लों की फिक्र कीजिए, यानी अल्लाह मेरी जुबान पर दुनिया की सबसे सच्ची बात, और वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको जारी कर दे ताकि बाद में मेरी नस्लें भी तौहीद पे रहे। और अल्लाह ने दुआ कबूल की। आज भी सब मिल्लतों के लोग इब्राहिम की तारीफें करते हैं। इब्राहिम की नस्ल में एक बेटा था याकूब, 2 बड़े बेटे थे ना, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम। तो इसहाक अलैहिस्सलाम का बेटा याकूब जो इब्राहिम के पोते थे, उन्होंने भी अपनी मौत के वक्त ऐसी एक दुआ की थी, क्या मेरे बच्चों मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? और उन सब ने क्या कहा था, हम सब के रब की यानी अल्लाह की इबादत करेंगे, तो इसमें मेरे आपके अमल की बात है। देखिए आपको यहां बैठ के मेरी बात शायद ज्यादा समझ नहीं आएगी, लेकिन हमारी नस्लें खतरे में हैं। आपके बच्चे आज जिस माहौल में, सच बताएं आपकी जवानी आपके बचपन से लेकर आज तक वक्त बदला? जमीन आसमान का बदल गया। पिछले 10 साल में जो बदला है वो पिछली पूरी शायद आपकी पिछली जिंदगी में नहीं बदला। जब से ये फोन मोबाइल हाथों में आए, नेट आ गया, हमारी तरबियत बदल गई, बेटी और बाप का ताल्लुक बदला, भाई बहन के सामने किन कपड़ों में आ सकती है बदला। तो जरा सोचिए एक नस्ल के बाद क्या होगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ऐसी जिंदगियां गुजारने वाला बना के हमारे बच्चे बाद में दीन पे रहें। तीसरा मानी लीजिए इब्राहिम की इस दुआ से क्या मुराद है कि ऐसे अच्छे तरीके अदा करवा हमसे कि हमारे बाद वाले उन पर चलते रहें। मुराद है कि इल्म भी हमें दे और हमें अमल भी दे। आज हम जो तरीका शुरू करके जाएं वो बाद में लोग अपनाएं तो हमारे लिए सदका जारी हो। कभी कोई बुरी रस्म ना शुरू करें, कोई बिदत शुरू ना करें। अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल की। क्या हुआ, हज का तरीका इब्राहिम से शुरू हुआ। वारी ना मना सीका ना वतुब अलैना ना की दुआ थी। अल्लाह ने आज तक देखिए हज के ऊपर लोगों के दिलों में कितनी मोहब्बत रखी है जाने की। वहां इब्राहिम ने घर बनाकर लब्बई की आवाज लगाई थी कि आओ लोगों, अल्लाह ने हर रूह को सुनवा दी और जिन्होंने लब्बई कह दी वो अब मरने से पहले हज जरूर करेंगे। तो ये इब्राहिम का तरीका आम हो गया। एक और है, चौथा मानी क्या, क्या मेरा दीन सच्चा। इस दुनिया में जब आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उस कौम तक भी इस दीन को पहुंचाना। अल्लाह ने इब्राहिम की दुआ इस सेंस में कबूल की। 2500 यानी 2500 साल के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अल्लाह ने नबी सल्लम को मबूस किया। दुआ की थी ना रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, तो नबी सल्लम की आमद के लिए ये दुआ कबूल हो गई और इब्राहिम की दुआ ये चौथे सेंस में पूरी हुई। एक और मानी ले लें, पांचवा मानी, जब यहाँ से उठे तो रस्ते में, रक्शे में, गाड़ी में, पैदल जाते आते आपने ये पांचों मानी जहन में रखकर अपनी दुआओं को समझना है कि क्या मेरी भी दुआएं ऐसी हैं। और वो पांचवा क्या था कि अल्लाह इस मक्का को अमन वाला शहर बना दे और दुनिया के फल और समरात इधर आता कर। इब्राहिम की दुआ कबूल हुई, आज तक ये सिलसिला जारी है। पहले तो दुआ करते अल्लाह हम सबको हज और उम्रे पे लेके जाए, अल्लाह उस घर को खोल दे, अल्लाह हमारे अमाल की शामत की वजह से हम पे नेकियों के रास्ते बंद ना कर, मक्का मदीना के रास्ते खुले रख। आज भी देखे बिन मौसम के फल आपको मिलेंगे, लोगों के दिलों में उस घर में जाने की मोहब्बत वहां मौजूद है। इब्राहिम की इस दुआ से हमें ये पता चलता है कि जिक्र जमील की दुआ की जा सकती है। शर्त यह है कि उससे दुनियावी फायदे नहीं बल्कि आखरत के फायदे मतलूब हों। अंबिया कराम ने अपने लिए भी दुआ की, अपनी औलादों के लिए भी की, अल्लाह के नबी से भी ऐसी दुआएं मिलती हैं। और वही जो मैंने आपको कॉल सुनाया इमाम मालिक रहमहुल्लाह का कि जो नेक बनने के लिए रियाकारी ना करे तो उसके लिए इज्जत और जाह की हमियत जायज़ है, यानी उसको फिर ये चीज़ें बुरा नहीं कहती। और जो इमाम गजाली की बात आपको सुनाई कि 3 शराइत पे आप ऐसी दुआ मांग सकते हैं, नंबर 1 आखरत का फ़ायदा मतलूब हो, झूठी तारीफें अपनी ना करवाएं और किसी गुना को इख्तियार ना करना पड़े, तो इंशाल्लाह आपकी वो दुआ आपको नुकसान नहीं देगी। चंद जुमलों में आज के लेक्चर से हमने क्या सीखा कि नेक काम करने से जिक्र खैर दुनिया में भी जारी रहता है और आखरत में भी बाद में सवाब और अजर का जरिया बनेगा। मौत के बाद इसाले सवाब होगा। आपसे जो नेकी फैली आज के इस प्रोग्राम में आपके आने का जो जरिया बना और आपने यहाँ जितनी अच्छी अच्छी नियतें की हैं, इंशाल्लाह उनको भी आपके इस सारे अमल का अजर मिलेगा। और हमने ये भी सीखा कि अपने अंदर आजजी लानी है, रूठे मुंह को मनाना है, खंदा पेशानी से मिलना है, तवाज़ो और इनकसारी बरतनी है, खैर और भलाई के काम करने हैं, नेक अमाल की तौफीक लेनी है। क्योंकि सूरह साफ़ात की आयत 108 से 111 में अल्लाह ताला कहते हैं सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम पे सलामती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ हमें ये भी सिखा गई कि आखिरी ज़माने में इब्राहिम की नस्ल से नबी सल्लम का आना और पूरी दुनिया पे देखिएगा क़यामत से पहले इस्लाम का फैलना, ये भी वजह ली लिसान सिदकिन में आता है। यानी इब्राहिम की नस्ल जो है इस्लाम की वो पूरी दुनिया में फैलेगी और इसका एक अमली इजहार होता है दुरूद शरीफ में, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन के बाद कमा सल्लैत अला इब्राहिम, और अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन, क्या पढ़ते कमा बारकता अला इब्राहिम। तो ये है दुआओं की तासीर। अल्लाह ताला आपको मुझे अच्छी दुआएं करने वाला बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالی خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما یا اللہ سب ساتھی جو بھی ہماری بہنیں مائیں بیٹھی ہیں ادھر ان سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ سب کے دلوں کی مرادیں پوری فرما یا اللہ ہمارا ایمان ہے تیرے سوا دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں یا اللہ تو ہمیں صرف تجھ سے مانگنے والا بنا یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت دے یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے یا اللہ ہماری جو بزرگ مائیں بیٹھی ہیں یا اللہ ان کو صحت والی زندگیاں دے یا اللہ ہم سب کو قرآن کی مصروفیت دے دے یا اللہ ہم اپنے گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اس کام کو کریں یا اللہ بچوں کی مائیں اپنی زندگی میں ابھی سے قرآن کو لائیں تاکہ ان کے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے یا اللہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے جس ساتھی نے بھی ایک لفظ سے بھی مدد کی یا اللہ اس کا بہترین اجر عطا فرما جو ہمارے ساتھی دوسرے شہر سے آئے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ ساتھ یا اللہ سنا ہے جو بھی اس وقت اس میں ان کو جو بھی کوشش کرنی پڑی یا اللہ سب کی قبول فرما یا اللہ ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی ہدایت پہ رکھنا اور ہمیں بھی ہدایت پہ رکھنا یا اللہ ہم ان محفلوں سے بہت اچھی باتیں سیکھ کر جائیں یا اللہ ہم سب میں سے جس نے ابھی تک لفظ بلفظ قرآن نہیں پڑھا ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ان کو اس کو پڑھنے کی توفیق دے یا اللہ میرے کہنے پہ یہ تیری کتاب سے جڑ جائیں میرے لیے بھی یہ بات وجلی لسان الصدقین فی الآخرین کی مصداق بن جائے یا اللہ ہم سب کو نیکیوں کی دعوت دینے والا بنا دے یا اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے یا اللہ جو تیرے پاس چلے گئے ان کی مہلت عمل ختم ہو گئی یا اللہ ان سے راضی ہو جا یا اللہ اگر کوئی انسانی خطا ہے کوئی گناہ ہے ایون کوئی عقائد کی خرابی تھی یا اللہ ان کے اعمال میں کوئی کبیرہ بھی گناہ تھا یا اللہ تو رحیم ہے تو رحمان ہے یا اللہ ان پہ رحم کر دے یا اللہ ہمارے زندوں پہ رحم کر دے ہمارے مردوں پہ رحم کر دے یا اللہ جن ماؤں کے بچے ان کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کے بچوں کو اپنی رحمتوں میں لے لے یا اللہ ہمارے جتنے بڑے تیرے پاس چلے گئے ان کی بخشش فرما ہمارے استادوں پہ اپنی رحمت فرما یا اللہ قرآن سیکھنے والوں پہ اپنی رحمت فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ کام کر رہے ہیں یا اللہ اس میں کوشش کر رہے ہیں جو اسباب کی کمی کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ جتنے ساتھی پاکستان میں جوہر آباد میں لاہور میں کراچی میں یا اللہ جہاں بھی دین سیکھ رہے ہیں ان کے حفظوں کو کھول دے یا اللہ ہماری زبان کی گرہیں کھول دے شر سے بچا یا اللہ یہ جتنے بچے رو رہے ہیں ان سب کو اپنے دین کے لیے چن لے یا اللہ ان کی ماؤں کو جو تکلیف ہو رہی ہے یا اللہ اس کا بھی ان کو بہترین بدلہ عطا فرما سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ